अखिल की बेचैनी अपने चरम पर थी। राजवंशी बंगले के उस बड़े कमरे में जहां अक्सर वो शांति की तलाश करता था, आज एक अजीब सी घुटन भर गई थी। वो लगातार अपने फोन की स्क्रीन देख रहा था, हर कुछ सेकंड बाद उंगलियां बेचैनी से मोबाइल के किनारों को दबाए जा रही थीं। कई बार उसने नंबर डायल किया, लेकिन हर बार घंटी बजती रही और दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ये लड़की आखिर चाहती क्या है, एक कॉल तक रिसीव नहीं कर सकती? किस हिम्मत से इग्नोर कर रही है मुझे? अखिल बड़बड़ाया, उसकी शब्दों में झुंझलाहट और गुस्सा साफ झलक रहा था। वो कमरे में इधर उधर चहलकदमी करने लगा। जैसे ही दूसरी बार कॉल करने की कोशिश की, उसका धैर्य जवाब देने लगा। न जाने खुद को क्या समझती है, मैं कॉल कर रहा हूं, कोई मामूली आदमी नहीं हूं, और ये है कि फोन उठाने की भी जरूरत नहीं समझ रही। वो खुद को रोक ही नहीं पाया और तीसरी बार नंबर डायल कर दिया। स्क्रीन पर वही नाम चमक रहा था, रैना। दूसरी तरफ रैना अपने कमरे में बैठी थी। कमरे के बीचों बीच उसके पिताजी बिस्तर लेटे हुए थे। उनका चेहरा पेला और थका हुआ था, लेकिन आंखों में अपनी बेटी के लिए चिंता साफ झलक रही थी। रैना उनके पास बैठकर दवाइयों की शीशी खोल रही थी। तभी फोन की घंटी गूंज उठी। लगातार बजती ध्वनि पूरे कमरे में गूंज रही थी। पिताजी ने करवट बदली और धीरे से बोले, बेटा फोन बज रहा है, शायद कोई जरूरी कॉल हो। रैना ने एक पल के लिए फोन की स्क्रीन देखी। नाम देखकर उसका चेहरा कठोर हो गया। उसने बिना सोचे समझे फोन को उल्टा कर दिया और बोली, नहीं पिताजी, ये कोई जरूरी कॉल नहीं है, बस एक फालतू इंसान है, आपको दवाई देना मेरे लिए सबसे जरूरी है। पिताजी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा चाहे जो भी हो, फोन बार बार बज रहा है, हो सकता है कोई परेशानी में हो, तुम उठा लो, मैं अपनी दवाई खुद खा लूंगा। रैना ने सिर हिलाया, लेकिन दिल के भीतर से मानो कोई आवाज उसे रोक रही थी। वो चाहती नहीं थी, फिर भी पिताजी के बार बार कहने पर उसने फोन उठाया। फोन उठते ही उधर से अखिल की झल्लाई हुई आवाज बरसी, आखिर तुम कर क्या रही थी, इतनी देर से फोन क्यों नहीं उठा रही, समझती क्या हो खुद को, कोई तुम्हें लगातार कॉल कर रहा है और तुम हो कि इग्नोर मार रही हो, तुम्हें शर्म है या नहीं? रैना ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, प्रॉब्लम क्या है अखिल, एक तो खुद ही फोन करते हो और फिर मुझे डांटते हो, मैंने तुम्हें कॉल करने को कहा था क्या? अगर तुम्हारी मर्जी से कॉल किया है तो अब तमीज से बात करो। तमीज? अखिल की आवाज और तेज हो गई, तुम्हें पता भी है किससे बात कर रही हो? मैं? लेकिन रैना ने उसकी बात बीच में ही काट दी। हाँ, मुझे अच्छी तरह पता है किससे बात कर रही हूँ, एक ऐसे आदमी से जो अपनी ही बातों में उलझा रहता है। सुनो अखिल, मेरी जिंदगी में पहले से इतनी जिम्मेदारियां हैं कि तुम्हारे बेवजह गुस्से को झेलने का वक्त नहीं है, समझे तुम? अखिल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसके लिए ये पहली बार था जब किसी ने उससे इस अंदाज में बात की थी। रैना, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, तुम्हें अंदाजा भी है ये सब मेरे साथ करने की हिम्मत तुमने कैसे की? रैना ने ठंडी आवाज में कहा, हिम्मत की जरूरत तब होती है जब सामने वाला इंसान सही मायनों में जरूरी हो, तुम मेरे लिए वैसा इंसान नहीं हो। अब अगर तुम्हारा गुस्सा निकल गया हो तो मुझे अपने पिताजी को दवाई देनी है, और हाँ, अगली बार फोन करने से पहले सोच लेना कि तुम्हें मुझसे बात करनी भी है या नहीं। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। कमरे में कुछ देर तक सन्नाटा छा गया। अखिल अपने हाथ में मोबाइल दबाए खड़ा रह गया। उसका सांस लेना भारी हो गया था। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें थीं, लेकिन कहीं ना कहीं एक चोट भी झलक रही थी। ये लड़की मुझे ठुकरा कैसे सकती है, उसने खुद से बुदबुदाया। वो अपने कमरे की खिड़की तक गया और बाहर अंधेरे में झांकने लगा। अंदर ही अंदर उसकी बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। अब ये सिर्फ गुस्से का मामला नहीं था, ये उसके अहंकार पर चोट थी। उधर रैना ने फोन मेज पर रख दिया और पिताजी के पास बैठ गई। उसने उन्हें पानी दिया और प्यार से कहा, आप चिंता मत करिए पापा, मैं हूं ना, आपको मेरी वजह से किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पिताजी ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीमे से मुस्कुराए, बेटा तू बहुत मजबूत है, लेकिन कभी कभी अपने लिए भी जीना जरूरी होता है। रैना ने बस हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन अंदर से उसका दिल भारी हो गया। वहीं दूसरी तरफ अखिल के कमरे में गुस्से का तूफान थमता ही नहीं था। वो सोच रहा था, ये सब मैं क्यों महसूस कर रहा हूँ, क्यों इसकी अनदेखी मुझे इतना बेचैन कर रही है, मुझे क्या पड़ी थी इसे कॉल करने की। लेकिन मन ही मन उसे पता था, रैना का असर अब उसकी रगों तक समा चुका था।